భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హిమావదీపోచ్చ విసుందరాయ తస్మై మహాప్రేమరసప్రదాయ చైతన్యచంద్రాయ నమో నమస్తే. చైతన్యచంద్రాయ నమో నమస్తే. చైతన్యచంద్రాయ నమో నమస్తే. శ్రీమద్ భగవతం 8th canto 22nd chapter verse number 12. శ్రీశుక ఉవాచ తశ్చైత్తం భషమానశ ప్రహ్లాద భగవత్ ప్రియం ఆజగం కురు శ్రేష్ట రాకపోతిరీవత్థిత. రిపీట్ కరెక్ట్. వాట్ టు వాట్ మీనింగ్. శ్రీ శుక ఉవాచ, శ్రీ సుఖదేవ్ గోస్వామిని కహ తస్స బలి మహారాజ్ కా ఇత్థం ఇస్ ప్రకార భాషమానస్య అప్ని భాగ్యశాలీ స్థితి కా వర్ణన్ కర్తే హుయే ప్రహ్లాద మహారాజ్ ప్రహ్లాద భగవత్ ప్రియ భగవాన్ కే సర్వాధిక ప్రియ భక్త ఆయోజగం వహ ప్రకట్ హుయే కురు శ్రేష్ట, హే కురువో మే శ్రేష్ట మహారాజ్ పరీక్షిత్ రాకా పొథి చంద్రమా ఈవ సదృశ ఉత్థిత ఉదిత హే. అనువాద మేరే పిచ్చే దోహరాయ. సుఖదేవ్ గోస్వామి నే కహా హే కురు శ్రేష్ట, జబ్ బోలి మహారాజ్ ఇస్ ప్రకార అప్నే భాగ్య కి ప్రశంసా కర రహే థే తో భగవాన్ కే పరమ ప్రియ భక్త ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వహాం ప్రకట్ హుయే మానో రాత్రి మే చంద్రమా ఉదయ హువా హో. ఈ శ్లోక పర్ ప్రభుపాద్ జీ కా కోయి తత్పర్య యే నహీ హై. తమింద్రసేన సపితామహ శ్రియా విరాజమానం నలినాయతేక్షణం ప్రాంశు విసంగం వరం అంజనాతీశం ప్రలంబాహు శుభ గర్వభూమైస్కద. అనువాద. బలి మహారాజ్ నే పరమ భాగ్యశాలి వ్యక్తి అప్నే పితామహ ప్రహ్లాద్ కో దేఖా, జిన్కా శ్యామల శరీర ఆంఖో కి అంజన్ జైసె లగా రహతా, ఉన్కా లంబా భవ్య శరీర పితాంబర ధారణ కియే థా, ఉన్కీ భుజాయ లంబే థీ ఔర్ ఉన్కీ సుందర ఆంఖ్ కమల్ కీ పంఖేడో కే సమాన్ థీ. वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे, ये महापुरुष का लक्षण है। इस श्लोक पर भी प्रभुपाद जी का कोई तात्पर्य नहीं है। 14 नंबर श्लोक, तस्मै बलिवारो न पाशयन्त्रितं समाहानं न पजार पूर्वव ननाम मुर्धं श्रुविलोचन सवीर नीचनो मुख बभूवहम्। अनुवाद, वरुण पाश से बंधे होने से बोली महाराज पहले की भांति प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए, उन्होंने केवल शीर के द्वारा प्रणाम किया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका शीर नीचा था। इस श्लोक पर ऐसे प्रभुपाद महाराज के द्वारा तात्पर्य ध्यान से सुनिए। चूंकि बोली महाराज को भगवान वामन देव ने बंदी बना लिया था, अतएव वे निस्संदेह अपराधी माने जाने के योग्य थे और बोली महाराज गंभीरता पूर्वक अनुभव भी कर रहे थे कि वे भगवान के अपराधी है। प्रहलाद महाराज को निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए बोली महाराज लज्जा से अपना सिर नीचा किए थे। ये भगवान कृष्ण की एक लीला है। हर अवतार के स्रोत है भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण हर रसों के स्रोत है। कितने प्रकार रस है? रस कितने प्रकार है? कितने रस? 12 प्रकार के रस है। उनमें से 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। 5 मुख्य क्या है? मुख्य रस क्या है? प्रमुख रस क्या है? शांत, दास, सख, वासल, माधुर्य। और 7 गौण रस क्या है? अद्भुत, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स। तो हर रस के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का अलग अलग अवतार है। अवतारा ही असंख्य हरि, लेकिन असंख्य अवतार में से 10 प्रमुख अवतार लेकर के जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखे, तो जो 10 अवतार स्तोत्र, एक एक अवतार लेकर के भगवान कौन सा रस आस्वादन किए, इसके बारे हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर मत व्यक्त किए। तो भगवान कृष्ण जब मीन अवतार रूप धारण करके आए थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, तो ये भक्ति सिद्धांत के मत है। जब भगवान कृष्ण मीन अवतार रूप लेकर के आए थे, वेदों को उद्धार किए, सत्यव्रत जो राजा थे उनको उद्धार किए, तो उस अवतार में भगवान कृष्ण मीन अवतार रूप लेकर के विभत्स रस आस्वादन किए। तो विभत्स रस ये एक गौण रस है, विभत्स रस। तो ऐसा ही भगवान कृष्ण जब कूर्म अवतार रूप लेकर के आए थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए? कूर्म का आकार कितना था, कितना बड़ा था? कूर्म का आकार के बारे ये प्रभुपाद अपना तात्पर्य में व्यक्त किया, तो भागवत में उल्लेख है 1,00,000 योजन। कुर्म का आकार 1,00,000 योजन। 1 योजन का मतलब कितना किलोमीटर है? नहीं नहीं 1 योजन का मतलब 12 किलोमीटर है, 8 मील, 12 किलोमीटर। तो 1 योजन का 12 किलोमीटर, तो 1,00,000 योजन कुर्म का आकार, तो कितना किलोमीटर है कुर्म का आकार? 12,00,000 किलोमीटर। थोड़ा ध्यान से सुनिए, 12,00,000 किलोमीटर कुर्म का आकार कितना बड़ा है? ऐसा ही बड़ा कुर्म रूप धारण करके क्या किए? स्थिर समुद्र असुरा देवता जब मंथन करते थे उसी समय वो मंथन का जो दंड था मंदर पर्वत आधा शून्य होने के नाते ही समुद्र नीचे गिर रहा था, तो उसको धारण करने के लिए कुर्म रूप धारण कर अपना पीठ पर ये मंदर पर्वत को धारण किए। तो उसी समय कुर्म का जो निश्वास त्याग दिए वो निश्वास से लहरें उत्थित हुए थे। उस दिन से आज भी तक ऐसा ही समुद्र में लहर उत्थित हो रहा है। ये भगवान का लीला है कि नहीं? तो ऐसा ही भगवान कृष्ण कूर्म रूप धारण करके कौन सा रस आस्वादन किए थे? अद्भुत रस। अद्भुत भी एक गौण रस है, ये भगवान के लीला है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जब शुक रूप धारण करके आए थे तब कौन सा रस आस्वादन किए? उस अवतार में भगवान कृष्ण भयंकर रस, भयानक, भयंकर मतलब भयानक रस। तो भयानक रस वो भी एक गौण रस है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपना पुत्र वो पहले जो थे चारों कुमार सनक सनंद सनातन सनत कुमार वो सभी को निर्देश देते तुम सब प्रजा सृष्टि करो, लेकिन चारों कुमार पिताजी का आदेश पालन नहीं किए। नारद मुनि को ऐसा ही आदेश कहते हैं, लेकिन नारद मुनि भी पिताजी का आदेश पालन नहीं किए, तो कैसे प्रजा सृष्टि करेंगे? ब्रह्मांड में कैसे प्रजा वृद्धि होंगे? तो इसीलिए ब्रह्मा जी जब शंभु मनु शतरूपा को सृष्टि किए तो वो दोनों का निर्देश देते तुम पृथ्वी पृष्ठ जाकर वहां के प्रजा सृष्टि करो। तो पिता का आदेश वो दोनों पालन किए, शंभु मनु शतरूपा। तो पिता का आदेश लेकर के जब प्रजा सृष्टि करने के लिए पृथ्वी लोग में आ रहे थे तो देखा पृथ्वी अपना स्थान पर नहीं है। उस समय पृथ्वी कहाँ गिरे हुए थे? वो शीर्ष समुद्र नीचे में चला गया, गर्भ समुद्र के नीचे चला गया। पहले नक्श पृथ्वी लोग लेकर गर्भ समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि न असुरा देवता सृष्टि प्रारंभ से शत्रुता दोनों का बीच में। तो असुर लोग मन में सोचा कितना बुद्धिमान सब थे, जो पृथ्वी पृष्ठ पर जब यज्ञ करेंगे यज्ञ का भाग लेने से देवता का शक्ति बढ़ जाएगा, तो यज्ञ जब बंद हो जाएगा तब यज्ञ का भाग वो सब नहीं ले सकते, वो सब दुर्बल हो जाएंगे, तब हम सब आसानी से सभी को परास्त कर देंगे। तो इसीलिए ये उद्देश्य लेकर कितना बड़ा प्लान है, ये प्लान लेकर के हिरण्यकश्यप क्या किया? पृथ्वी को लेकर के गर्भ समुद्र में फेंक दिया। तो उस दिन से गर्भ समुद्र में ये पृथ्वी था। तो इसीलिए जब आए थे प्रजा सृष्टि करने के लिए पिताजी का आदेश लेकर के देखा पृथ्वी अपना स्थान पर नहीं है, फिर वापस लौट जाके वो ब्रह्मा जी के पास उपस्थित होकर अभिजोग किए, पिताजी पृथ्वी अपना स्थान पर नहीं आए, हम कहाँ पे वो प्रजा सृष्टि करेंगे? तो ब्रह्मा जी तो मन में सोचा हाँ तो ठीक सही बात है, तो कैसे पृथ्वी को फिर गर्भ समुद्र से उत्तोलन करेंगे? इसके बारे जब मन में सोचा तो उसी समय भगवान वो ब्रह्मा जी का नाक से छोटा सा एक शुक तो ब्रह्मा जी अब वो जो हंसी है जो जो, जो ये क्या बात हिंदी में सिंह जो किए तो लेकर अंदर से ऐसे प्रकट हो गए, छोटा स्वरूप लेकर देखने से देखते आकाश मार्ग उत्थित हो गए, ऐसे ही बड़ा रूप धारण किए, विशाल रूप धारण करे, हिमालय पर्वत से भी बड़ा रूप धारण करके गर्भ समुद्र में जब कूद पड़े तो गर्भ समुद्र का पेट फाट गया। तब तो उस समय गर्भ समुद्र नीचे चला गया, जाके शू शू कर रहे हैं, इसीलिए शुकर नाम हुआ। हाँ, शू शू करते हैं, ये जो शुकर है ना शोर शू शू कर रहा है, क्योंकि कहाँ पे विष्ट है कि नहीं, तो भगवान तो शुकर लेकर का है, सब ऐसा ही शू शू करके खोज रहे है कहाँ पे पृथ्वी है, तो शू शू करके वो मिल गया पृथ्वी, पृथ्वी लेकर के वो गर्भ समुद्र से बाहर निकाला है। ते भगवान ऐसे शुकर रूप धारण करके भयंकर रस आस्वादन किए, भयंकर एक गौण रस है। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे, नृसिंह रूप धारण करके आए थे। नृसिंह रूप धारण करके जब आए थे उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, उस अवतार में भगवान कृष्ण वीर रस के साथ साथ वात्सल रस आस्वादन किए, तो वात्सल रस प्राधान्य लाभ किए, इसीलिए उस अवतार में भगवान कृष्ण वात्सल रस आस्वादन किए, नरसिंह रूप लेकर के जो आए थे। तो नृसिंह अवतार में भगवान जब हिरण्यकश्यप के पराशर स्तंभ से प्रकट हुए थे, उसी समय वो हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए उग्र रूप धारण किए, और हिरण्यकश्यप को वध करने के बाद हिरण्यकश्यप के जितने सारे फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो सभी सशस्त्र लेकर के नृसिंहदेव के साथ युद्ध किए, तो नृसिंहदेव सभी को वध किए, इसीलिए नृसिंहदेव का रूप अति उग्र रूप धारण किए। तो उनके जितने सारे शत्रु सब वध किए, वध करने के बाद जब नृसिंहदेव एक जगह पर स्थित हो गए, तो उसी समय जितने सारे देवता आदमी वहां पे आ गए, लेकिन भगवान नृसिंहदेव का रूप देखभाल कर कोई उनके पास गए नहीं, स्तुति करने के लिए, सौम्य रूप धारण करने के लिए स्तुति करने कोई गए नहीं, भयभीत हो गए, ऐसे कि ब्रह्मा जी शिव जी वो सभी भयभीत हो गए। हाँ, कोई जाके भगवान नृसिंहदेव की स्तुति नहीं कर पाया, तो उसी समय ऐसा कि साक्षात लक्ष्मी देवी वहां पे आ गई, लेकिन लक्ष्मी देवी मन में सोचा मैं तो कभी ऐसा रूप दिखा नहीं, तो लक्ष्मी देवी भयभीत हो गई, उन्होंने भी गाए नहीं, तो उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी मन में सोचा प्रभु जिनके लिए अवतरित हुए हैं उनको भेजना चाहिए, तो किसके लिए अवतीर्ण है, प्रहलाद के लिए, तो प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद 5-7 साल का लड़का है लेकिन निर्भीक, ब्रह्मा जी जब आदेश के तुम जाके प्रभु को स्तुति ये शांत करो, तो प्रहलाद जब आके प्रभु के चरण गिर करके जब प्रणाम कर रहे तब नृसिंहदेव का उग्र रूप अंतरित हो गया, उस नृसिंहदेव का शांत रूप सौम्य रूप धारण किया। तो ये भगवान नृसिंहदेव तब क्या किए, प्रहलाद को पकड़कर अपना गोद पर बैठाए, पहले तो इसके सिर पर सर पर हाथ स्थापन किए, तो हाथ जब स्थापन किए तो प्रहलाद का दिव्य ज्ञान वैदिक ज्ञान प्रहलाद के हृदय में प्रकट है गया, उसी समय प्रहलाद स्तुति कर रहे थे भगवान नृसिंहदेव के, और नृसिंहदेव तब क्या किए, वो प्रहलाद को पकड़ कर अपना गोद में बैठाए, तो प्रहलाद नृसिंहदेव के गोद में जब बैठे तो उनका मन में इतना आनंद आ गए, नृसिंहदेव मन में सोचा मेरे गोद पर बैठकर प्रहलाद के मन में जो आनंद है वो आनंद क्या ऐसा, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मेरा पिता वो तो एक स्तंभ है, स्तंभ का गोद पर बैठे कैसे आनंद पाऊंगा, तो पिता माता गोद में बैठने के लिए कैसा जाए, जो आनंद है वो आनंद कैसा है उसके बारे पता चलाने के लिए ये भगवान का मन में लोभ जागृत हो गया। इसके बारे जब भगवान जितने अवतार रूप लेकर के आए थे कभी पिता माता छोड़ करके नहीं, पिता माता केंद्र करके आए थे। इसीलिए ये जितने सारे अवतार इसके बाद वो सत बार का अवतार माना जाता है। और नृसिंह देव तक जितने अवतार वो सभी अधबारक, अधबारक का मतलब पिता माता छोड़ करके आए थे। जैसे हम मीन अवतार, कुर्म अवतार, शुकर अवतार, नृसिंह अवतार, ये पिता माता छोड़ करके आए थे, इसीलिए ये अधबारक। इसके बाद नृसिंह देव के मन में जो लोभ प्रकट हो गया, तो लोभ चरितार्थ करने के लिए इसके बाद जितने बार वो अवतार रूप लेकर के आए थे हर अवतार में पिता माता केंद्र करके आए थे। जैसा वो प्रिश्नी गर्भ अवतार, प्रिश्नी गर्भ अवतार वो पिता माता केंद्र करके, तो माता प्रिश्नी, पिता सुतापा। इसके बाद वो भगवान कौन सा अवतार रूप लेकर के आए थे, ये वामन अवतार रूप लेकर के आए थे। पिता कौन है, कश्यप, माता अदिति। इसके बाद वो भगवान कृष्ण, वो भगवान आएंगे राम अवतार रूप लेकर के, तो पिता वो दशरथ, माता कौशल्या। इसके बाद भगवान कृष्ण आएंगे, वो भी पिता देवकी, माता वसुदेव। ऐसे जितने अवतार लेकर के आए थे हर अवतार में पिता माता केंद्र करके आए थे। तो ये भगवान इस अवतार में वो वात्सल्य रस एक मुख्य प्रमुख रस है। हाँ, पांच जो प्रमुख रस है, पांच प्रमुख रस में से एक है वात्सल्य रस। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे, ये वामन अवतार रूप लेकर के आए थे। तो वामन अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, इस अवतार में भगवान कृष्ण सखर रस आस्वादन किए। देखिए कितना सुंदर बात है ना, ये भक्ति सिद्धांत सोसाइटर का मत है। ते इस अवतार में क्योंकि देव अदिति देवी पयव्रत नामक एक व्रत पालन किए, तो वो व्रत से भगवान प्रसन्न होकर के उस सभी के सम्मुख प्रकट हो गए, तो उस सभी के पुत्र रूप लेकर के आए थे भगवान। तो भगवान जब वामन अवतार रूप लेकर के आए थे, तो उसी समय वामन अवतार वामन भगवान वामन वो बोली महाराज का यज्ञ जहां पे होता है वहां पे उपस्थित हो गए। वो कहा, भृगु कच्छ, अभी तो भृगु कच्छ नाम है, अभी तो भरुस नाम बन गया। भरुस नाम सुना, पहले भृगु कच्छ नाम था, भृगु कच्छ से भरुस बन गया। भरुस वहां पे हमारे इसका क्या ये है सेंटर है, तो वहां पे आ गए भगवान। आप बोली महाराज यज्ञ स्थल पर जब आके उपस्थित हो गए, तो वामन देव के इतना सुंदर रूप देखभाल करके वो बोली महाराज के जो लड़की थे रत्नावली, मन में सोचा कितना सुंदर ये बालक है, तो मेरा पुत्र होता तो मैं गोद में लेकर के स्तन का दूध खिलाऊंगी। तो वो रत्नावली मन में ऐसे ही सोचा, तो भगवान अंतर्जामी सब जान गए, तो तथास्तु कर दिए। तो उसी समय बोली महाराज वो वामन देव बोली महाराज से तीन पैर भूमि प्रार्थना की भिक्षा के। तो बोली महाराज देने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो छोटा छोटा पैर देखभाल करके, तो वो छोटा छोटा पैर में इतना जादू था, मैजिक था। जब देने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो एक पैर से भूलो आच्छादित कर दे, इतना बड़ा विस्तार किए, ऐसे विस्तार किए एक पैर से ये भूलो आस्वादन कर दे। इसके बाद दूसरे पैर विस्तार करके उच्च लग जितने सारे भूव स मोह जन तप सत्व ये सभी लोग अधिकार के लिए, फिर से पैर के नखन से ये ब्रह्मांड के जो सात आवरण है वो आवरण के छेद बना दिए। हाँ, तो छेद से क्या हुआ, कारण समुद्र का वो दिव्य जल छेद से इस ब्रह्मांड में आ रही है, तो गंगा जल माना जाता है। ये त्रिधारा प्रवाहित हो रहे बहती है, स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पृष्ठ में भागीरथी, पाताल लोक में भगवती त्रिधारा से। इसीलिए जयदेव गोस्वामी वामन अवतार के बारे ये स्तुति लिखा। छलय शिविक्रमणि बोलिमोद्भुत वाम पदन खनीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। केशव धृत वामन रूप, भगवान कृष्ण वामन रूप लेकर के जब आए थे उस अवतार में भगवान क्या किए, छल करके बोली महाराज के जितने, बोली महाराज के पास जितने सारे जागतिक ऐश्वर्य था वो सब छीन लिए, वो लेकर के वो स्वर्ग किसका प्रदान करेंगे, इंद्रों को प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भगवान छल करके वो जो बोली महाराज के पास जितने सारे भौतिक चीज था वो सब ले लिया, लेकर इंद्र को प्रदान किया। इसका अर्थ क्या है, इंद्र वास्तविक इंद्र को वंचित किया। हाँ, और भगवान वामन देव बोली महाराज को असली वस्तु प्रदान की, वो कौन है, भक्ति। हाँ, जो असली वस्तु है ना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन, ये हमारे लिए असली धन है। तो भगवान कितना करुणामय, इसीलिए भगवान जब किसी के प्रति कृपा करेंगे तो क्या करेंगे, पहले उनके पास जितने सारे भौतिक धन है वो सब छीन लेंगे, और उनके साथ जितने साथ रिलेटिव्स है जुड़े हुए वो सब अस्त व्यस्त कर देंगे। तब वो अकेला जब बन जाएंगे तब 100% भगवान के शरण में चला जाएंगे। और भगवान को शरण में जब चला जाएंगे तो वो भक्ति जो अनुशीलन करके भवबंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। तो ये वास्तविक प्रमाण है हमारा इस्कन का प्रतिष्ठाता आचार्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का एक वो मेडिसिन का दुकान था इलाहाबाद में। हाँ, आओ बहुत सब अच्छा अच्छा मेडिसिन था, बहुत मूल्यवान मेडिसिन था। आप प्रभुपाद अपना गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए क्या किए, उनका एक नौकर, नौकर के ऊपर ये इस्तेमाल करने के लिए वो प्रभुपाद निकाल गए वहां से झांसी, गीता वाणी प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जब झांसी में चला गया प्रचार करने के, उसी अवसर में वो प्रभुपाद जी का नौकर जो थे क्या किए, जितने सारे मेडिसिन और जितने सारे अर्थ था लेकर के भाग गए। तो उसी समय प्रभुपाद का जेब खाली हो गया। तो प्रभुपाद के साथ जितने सारे जुड़े हैं सम रिलेटिव्स थे वो सब प्रभुपाद को छोड़ दिया। तो इसी उसी समय प्रभुपाद ये भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक मुख में आवृत्ति किए, जस्य उन्हें गृह्णामी हरिश्च तद्धनं शनैः। भगवान जिनके प्रति कृपा करता है तो क्या करेंगे, उनके पास जितने सारे भौतिक धन है वो सब छीन लेते हैं, और उनके साथ जितने सारे रिलेटिव्स है संबंध है वो सब अस्त व्यस्त कर देंगे। तो यह ऐसा प्रभुपाद के जेब में जब अर्थ था तब तो जितने सारे रिलेटिव उनके साथ अच्छा तरह संबंध था, लेकिन प्रभुपाद का जेब जब खाली हो गया वो जितने सारे संबंधी थे वो प्रभुपाद को छोड़ दिए। तो प्रभुपाद इसीलिए वो भगवान कृष्ण के चरण में 100% शरण लेकर के वो गृह छोड़ करके कहाँ चला गया, वृंदावन में। वृंदावन में जाके तब ये वृंदावन भजन लिख रहे थे। तो लिख वो एक वृंदावन भजन में अपना के बारे ये बताया है, कौन सा, अर्थहीन देखी मरे छेड़े सवाई कुटुंब आत्मीय बंधु जन भाई, दुख है हासी पाए एका बसे हासी मायार संसारे काके भालोबासी। जब मेरा मेरे जेब में पैसा था उस समय बहुत सारे संबंधित है मेरे साथ। जब पैकेट खाली हो गए, जब खाली हो गए तो जितने सारे संबंधित साहब मुझे छोड़ दिया। इसीलिए प्रभुपाद बोले अर्थहीन देखी मोरे छेड़े छे सबाई। प्रभुपाद के पास कोई पैसा नहीं, इसीलिए उनके साथ जितने सारे वो संबंधित है वो सब प्रभुपाद को छोड़ दिए। तो तब प्रभुपाद क्या बोले हैं, दुख है हासी पाए एका बसे हासी। तब वृंदावन में अभी अकेला हो गए, तो हंस रहे हैं फिर भी दुख भी कर है। कौन सच करके ना, ये मायार संसार काके भलोबासी, अर्थात ये माई के संसार है। माई के संसार में ये जितने सारे रिलेटिव्स है ये सब अनित्य है। वास्तव संबंध हमारे किसके साथ करना चाहिए, वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ, वो नित्य है। ये जगत में ये पिता माता आत्मीय सजन बंधु बांधव जितने सारे है ये सब अनित्य है। जब तक ये शरीर है, जब जेब में पैसा है तब तक, जेब में पैसा नहीं तो कोई संबंध नहीं है। तो मैं इसीलिए प्रभुपाद हंस रहे फिर भी दुख भी कर रहे। तो ऐसा ही वो भगवान बोली महाराज के पास जितने सारे भौतिक संपत्ति था वो सब तीन पैर भूमि प्रार्थना छल करके दो पैर से हार लिए। उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी खाली हो गया। तो शर्त पूर्ण नहीं किए, इसीलिए वामन देव का निर्देश के अनुसार गौड़ी जी क्या किए, वो बोली महाराज को नागपास से बंधन किए। तो नागपास से जब बंधन किए, ये देख करके बोली महाराज की जो लड़की है रत्नावली, मन में सोचा ऐसे अस्त अस्त कर दे तो बोली महाराज की लड़की रत्नावली, तब मन में सोचा ये लड़का को मैं 20 दे करके मार दूंगी। तो बामन वो भी समर्थन किया। तो इसीलिए वो रत्नावली अगले जन्म में पुतना बन करके आए थे ना। तो पुतना वो परम ब्रह्म कृष्ण को वध करने के लिए कंस के निर्देश के अनुसार मथुरा से कहाँ चले गई, चले गए तो गोकुल में, और वहां पे जाके लक्ष्मी देवी जैसे ऐसे रूप पकड़ ले, हाथ में ये कमल पकड़ करके धीर गति से चल रहे थे। और ब्रजवासी जितने शेर थे वो देखभाल कर मन में सोचा ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, हमारे ये नंद जी का पुत्र कृष्ण को दर्शन करने के लिए आ रही है। तो वो मन में ऐसा ही विचार करके पूछे नहीं आप कौन है, तो आसानी से ऐसा ही वो पुतना कहाँ चले गई, वो नंद महाराज के भवन में चले गए। वहां पे भगवान कृष्ण के पास उपस्थित थे वो जसदा माता रोहिणी देवी, उन्होंने मन में सब सोचे ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी आ रही है, हमारे शिशु पुत्र को दर्शन करेंगे तो हमारे शिशु पुत्र का सौभाग्य उदित हो जाएगा, भाग्यशाली बन जाएंगे और हर प्रकार के मंगल उदित हो जाएंगे। तो ये समझ करके वो जसदा माता रोहिणी माता वो वहां से निकाल गए। उसी अवसर पुतना आके स्नेह भाव प्रकट करके वो शिशु कृष्ण को अपना गोद में उठा लिया और स्थान में कालकोट विष लपकर कहा तो वो कृष्ण का मुंह में डाले। तो कृष्ण पुतना को स्थान पकड़ करके और प्राण बाई के साथ जब ये दूत खींच पी रहे थे तो उसी समय इतना पीड़ित हो गई। तो पुतना तब बोले छोड़ दो हा भगवान कृष्ण जिसके एक बार पकड़ लेते हैं वो आसानी से छोड़ेंगे नहीं, जब तक मुक्ति नहीं देंगे। ऐसा ही हो पुतना को जब प्राण भाई के साथ दूध पी रहे थे उस पुतना का जतकली रूप वो लक्ष्मी रूप अंतरित हो गया, उस असली रूप प्रकट है। वो कौन सा है, राक्षसी रूप। उच्चता कितना था, 18 किलोमीटर ऊंचा था, इतना बड़ा राक्षसी को 6 दिन का एक बालक को श्री कृष्ण भगवान वध करके क्या किए, मातृत्व पद देकर के अपना धाम में भेज दिया। इसीलिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, ओ बो की जं स्तन कालकूटं जिघं शैप दप सादी लेबे गोतिं धात्र चीतं अन्नं कंग दयालं शरणं ब्रजेम। अति प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक सुनकर के जो सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ करके वन में चले गए, वो सुखदेव गोस्वामी जो लकड़ी काट रहे थे उनके वो सभी के मुख से जब ये श्लोक सुने, तब वो सुखदेव गोस्वामी भागवत शिक्षा करने के लिए फिर वन छोड़ करके कहाँ चले गए, अपना पिताजी के पास, व्यासदेव जी के पास। व्यासदेव उसी समय सम्माप्रास्थ आश्रम में थे, व्यासदेव जी का आश्रम, वहां पे उपस्थित होकर के ये प्रार्थना करे, आप कृपा करके ये भगवान शिक्षा मुझे दीजिए। तो वो श्लोक सुखदेव के मन में सोचा, जब वो बन में लकड़ी काट रहे थे जो व्यासदेव जी के दो शिष्य, तो वो व्यासदेव जी के निर्देश के अनुसार ये दो प्रसिद्ध श्लोक हर्ष मुंग में उच्चारण कर रहे थे, ये कृष्ण के गुण के बारे और दूसरे वो कृष्ण के माधुर्य लीला के बारे रूप के बारे। तो ये पहले नंबर श्लोक है, ओहो बो की जं स्तन कालकूटं जिघं शैप दप सादी लेबे गोतिं धात्र चीतं अन्नं कंग दयालं शरणं ब्रजे। एक असती नारी जो बकासुर का बहन है, स्तन में कालकूट बीज लिपा करके आए थे वो परम ब्रह्म कृष्ण को वध करने के लिए, और परम ब्रह्म कृष्ण क्या किए, पुतना को वध करके मातृत्व पद दे करके अपना धाम गोलक वृंदावन में भेज दे। ऐसे ही करुणामय व्यक्ति इस जगत में कौन हो सकता है, तो मैं उनका शरण में चला जाऊंगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म चिंतन में थे, वो ब्रह्म चिंतन छोड़ करके अभी परम ब्रह्म कृष्ण का भक्त बन गए। ये प्रसिद्ध श्लोक है। और दूसरे श्लोक है, बारा पीड़ा नड़पट वपु कर्ण कोर्णिकार विभ्रात वास कनक कपिशन वैजंतिं च मालम। ये कृष्ण का माधुर्य रूप के बारे, लीला के बारे ये श्लोक, दो श्लोक अति प्रसिद्ध श्लोक है। ऐसा ही आत्मारम पुरुष ये सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुण के बारे जब श्रवण किए, तो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट बन गए। अब सुखदेव गोस्वामी भगवान का महान भक्त बन गए। ऐसा ही अपना पिताजी व्यासदेव जी के मुख से भागवत कथा एक बार सुन करके वही भागवत फिर परीक्षित महाराज सभा में पुनरावृत्ति किए। ते नैष्ठिक ब्रह्मचारी का परिचय है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी पिताजी के मुख से जो भागवत कथा श्रवण किए, हर समय मन में याद था, ये ब्रह्मचारी का। तो ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज सभा में ये भागवत कथा कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वहां पे उपस्थित कौन थे, सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत सुन करके फिर वो भागवत कहाँ पे पुनरावृत्ति किए, नैमिषारण्य, वहां 88,000 मुनि ऋषि के सम्मुख में ये भागवत का कीर्तन किए। उन्होंने भी ऐसा ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इसीलिए एक बार सुनकर ऐसा ही भागवत सुसिद्धांत कथा वहां पे व्यक्त किए। उन्होंने जो कीर्तन किए वही बात व्यासदेव जी ये भागवत ग्रंथ आकार में प्रकट किए लिख करके। तो ऐसा ही ये भगवान कृष्ण ये जो वामन अवतार रूप लेकर के आए थे, ये वामन अवतार में ऐसा ही काम किए जो दो पैर से बलि महाराज के पास जितने सारे भौतिक संपत्ति था सब छीन ले, इसके बाद वो दूसरे जो पैर थे उनका नाखून से ये ब्रह्मांड का जो 7 आवरण वो छेद बना दिए। ये भगवान का अद्भुत कार्य है। इस अवतार में भगवान कृष्ण और शखर स्थापन किए, इसीलिए तो वो 30 रुपए देने के लिए बोली महाराज के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए भगवान बामन देव के निर्देश के अनुसार गौरी जी नागपा से जब बंधन किए उसी समय ये बोली महाराज अपना को सौभाग्यशाली मन करके भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इस जगत में दो प्रकार के आदमी है, एक देवता है दूसरे असुर है, तो असुर आदमी हर समय भगवत विद्वेषी होते हैं, लेकिन भगवान इतना कृपामय, ये बलि महाराज असुर कुल में है, लेकिन भगवान उनके पास जितने सारे भौतिक संपत्ति था वो सब छीन ले लेकर के उनके असली वस्तु प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इसीलिए बलि महाराज बामन देव को प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो सब असुर हैं। असुर का मतलब क्या है? असम भगवत विद्वेष करना। तो जैसा प्रहलाद महाराज उस असुर कुल में जन्म लेते, लेकिन वो प्रहलाद महाराज अपना पिता के आदेश तोड़ करके, असुरों को अनुरोध तोड़ करके भगवान कृष्ण के शरण में चला गए। वैसे ही वो प्रहलाद महाराज को अनुसरण करके बलि महाराज वैसा ही अपना गुरुजी शुक्राचार्य का आदेश तोड़ करके वो भगवान बामन देव के शरण में चला गया। इसीलिए प्रहलाद महाराज अपना को बहुत भाग्यशाली मन रहे थे, इसीलिए बामन देव प्रशंसा कर रहे, प्रभु कृपा करके, प्रभु तो लक्ष्मीपति है, हाँ भिक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो लक्ष्मीपति भगवान मेरे पास आए हैं भिक्षा करने के लिए, भिक्षा करने के ये छल करके आए हैं, आके मेरे पास जितने सारे भौतिक चीज है सब छीन लिए, मेरा मन में जो गर्व था दम्भ था वो तोड़ दिए, दे करके अभी अपना भक्त बना लिए, इसीलिए अपना को प्रशंसा कर रहे बलि महाराज। जब ऐसे प्रशंसा कर रहे तब उसी समय प्रहलाद महाराज वहां पे प्रकट हो गए। बलि महाराज ठीक से समझ गए, जब ऐसे ही भगवान प्रशंसा कर रहे, भगवान हमारे लिए कितना करुणा प्रकट किया, जिससे जो भौतिक संपत्ति से मेरा मन में जो गर्व था दम्भ था, ये तो जितने सारे वस्तुएं सब भगवान के है ना, हम भगवान के संपत्ति लेकर के हम गर्वी हो गए, है कि नहीं? हाँ, ईशावासंग मीदंग सर्वं, ये जितने सारे चीज है सब भगवान का है, लेकिन बोली महाराज अभी ये मन में सोचा, ये भगवान के संपत्ति में लेकर के मैं समझ रहा मैं ही दाता हूँ। तो भगवान जब बामन रूप लेकर के आए थे, तीन पे भूमि प्रार्थना कर रहे थे, मैं दाता रूप से दान कर रहे है, ये मेरा मन में गर्व था, लेकिन दो पैर से मेरा पास जितने सारे भौतिक चीज है वो सब ले लिया, मेरा पास कोई कुछ भी नहीं है। तब बोली महाराज मन में सोचा, जो मेरे पास जितने सारे भौतिक चीज है तो ले लिया, मेरे पास केवल मेरा शरीर है, तो भगवान का तीन पे भूमि देने के लिए मैं प्रतिश्रुति है, तो भगवान बामन देव के प्रार्थना की, प्रभु आपका 30 रुपए प्रकट करके मेरा ये शिल्प स्थापन की शरीर आपको दे दिया। तो तब भगवान वो 30 रुपए प्रकट करके बलि महाराज का सर्प स्थापन करके बलि महाराज कहा वहां से कहां ले गए, सुताल में, सुताल में लेकर के वहां पे राजा बना दिए, दे करके बामन देव, जो बामन देव बलि महाराज को बंद किए, अभी वो बामन देव के जब अपना शरीर प्रदान किए, आत्मनिवेदन किए, तब वो बामन देव अभी बलि महाराज के द्वारा बंदी प्राप्त हो गए। तो वहां पे सुताल में बलि महाराज राजा है, आ राजा के द्वारपाल रूप से बामन देव और द्वार देश में खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, वामन देव बलि महाराज के द्वारा वामन देव बंदी बन गए। इसीलिए बोली वामन देव वो बलि महाराज के साथ सख तो स्थापन करके सख राशा सदान कर रहे है, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र को जब ऐसा ही फायदा उठाएंगे तब तो वो मित्र माना जाता है कि नहीं। तो सख रस वामन देव बलि महाराज के साथ ऐसे ही सख्त स्थापन करे करके सख रस आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण इस अवतार में ये सख रस आस्वादन किए। तो हमारा तो समय हो गया था तो जल्दी खत्म करना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे? परशुराम रूप लेकर के आए थे। परशुराम रूप लेकर के जब आए थे उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए? रौद्र रस। रौद्र रस एक गौण रस है। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे? राम रूप लेकर के आए थे। राम रूप जब लेकर के आए थे उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए? वीर रस के साथ साथ करुण रस, क्योंकि रामचंद्र जी के एंटायर जीवन ट्रेजेडी में भरपूर है कि ना, भरा हुआ है। जब रामचंद्र रात अवसान के बाद अयोध्या राज सिंहासन पर बैठे के लिए सब प्रस्तुत हो गए, उसी समय अपना विमाता कैकेयी दशरथ से दो वर मांगे। एक वर से क्या हुआ, रामचंद्र के 14 साल के लिए वनवास जाना है, वनवास में आ उनके अनुपस्थिति से वो अपने पुत्र भरत राजगद्दी में बैठेंगे। देखिए ये जीवन के पहले प्रथम घड़ी से ऐसे रामचंद्र के जीवन ट्रेजेडी में है कि नहीं, करुण रस में। तो ऐसे ही भगवान रामचंद्र वो अयोध्या छोड़ करके वनवास में चला गया और उनके साथ चला गया वो अपना प्रियतम भाई लक्ष्मण जी और प्रियतम पत्नी सीता देवी जी। तो वनवास में जब गए थे वहां पे क्या हुआ, राम लक्ष्मण के अनुपस्थित से राक्षस रावण आके पंचवटी वन से सीता देवी को हर ले गए। तो कैसा ट्रेजेडी देखिए, रामचंद्र का हर इंटर जीवन कैसा ट्रेजेडी में भरा गया है। फिर वो रामचंद्र लक्ष्मण ऐसा है राक्षस रावण के साथ युद्ध करके वो सभी को परास्त किए, वो सब बात किए रामचंद्र। तो ये वीर रस आस्वादन किए, किंतु वीर रस से वो करुण रस प्राधान्य लाभ किए। इसीलिए जयदेव गोस्वामी स्तुति में ये बताए, बीतर से दीख सुरने दीगपति कमुनियम दश मुख मोली बोलिंग रमोनियम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान रामचंद्र वो 10 मुख वाला रावण के साथ युद्ध करके वो 10 शीर धर से अलग कर दे देकर के क्या कि एक एक शीर एक एक दिक को उपहार सर प्रदान किए। दिक कितना है, दिशा 10 दिशा है, एक एक दिशा को एक एक शीर प्रदान के उपहार से। ऐसा ही वीर रस आसरण किए, वीर रस के साथ साथ करुण रस प्राधान्य लाभ किए। इसीलिए भक्ति सिद्धांत शास्त्र ने यह बोले है राम अवतार में भगवान कृष्ण करुण रस आस्वादन किए। इसके बाद रावण को वध करके जब सीता देवी को उद्धार किए तब आसानी से सीता देवी को ग्रहण नहीं किए। फिर सीता देवी को परीक्षा देने के लिए ये बात उठा, उसने परीक्षा देना चाहिए, तो उसने परीक्षा से सीता देवी उत्तीर्ण हो गए। तब रामचंद्र सीता देवी को लेकर के अयोध्या वापस लौट आए, अयोध्या राजा बन गए, सीता देवी रानी बन गए। फिर प्रजाओं का मनोभाव समझने के लिए रामचंद्र छद्म रूप से वो राज्य में घूमते रहते थे। उसी समय क्या हुआ, एक धोबा का एक स्त्री एक रात बाहर में था, बाहर में, तब अगले दिन सुबह जब आए थे तब धोबा ने बोले तुम तो एक रात बाहर में था तो इसीलिए तुम असती बन गए, मैं तुमको ग्रहण नहीं करूंगा। तो उसी समय धोबी, धोबा का स्त्री जो है धोबी, उन क्या बात उठे, मैं एक रात बाहर में था इसीलिए मैं औषधि बांध गए, और सीता देवी 10 महीना बाहर में था और रामचंद्र उनको ले करके रानी बना लिया। तब तो ये बात सुना रामचंद्र छद्म रूप से जब घूमते रहते थे, ये बात सुना तो रामचंद्र नीरव हो गए। आके प्रासाद वापस आके लक्ष्मण को आदेश दे, तुम ये सीता को लेकर के तपोवन में छोड़ दो, वाल्मीकि जी का तपोवन में। लक्ष्मण देव सुनकर तो चुकी थे, क्या हुआ, सीता देवी उस समय गर्भवती थे, ऐसे सीता देवी को लेके तपोवन में छोड़ने के लिए आदेश दे रहे, लेकिन बड़े भाई है हाँ, जुक्ति नहीं कर सकेंगे। मन में बहुत दुखी हो गए लक्ष्मण जी। तब उसी समय लक्ष्मण जी मन में ये सोचा, इसके बाद जब कोई किसी समय अवतार रूप लेकर के आऊंगा, कभी छोटा भाई बन करके आऊंगा नहीं हाँ, छोटा भाई बन करके आऊंगा तो बड़ा भाई का आदेश नीरव से पालन करना चाहिए हाँ, उस पर कोई जुक्ति चलेगा नहीं। तो इसके अवतार के बाद जितने बार वो लक्ष्मण देव आए थे, वो हर समय बड़े भाई बन करके आए थे। कृष्ण अवतार में बलराम, महाप्रभु का अवतार में नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आदेश बहुत अनेक बात तोड़ दिए, नहीं तो महाप्रभु आदेश कर तुम कभी ये नीलाचल में आओगे नहीं, वो गौड़ देश में रह के वहां पे प्रचार कर, लेकिन महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम था, वो महाप्रभु का आदेश तोड़ करके हर बार आते थे पूरे धाम में। तो ऐसा ही है, तो जो भी हो, तो ये इसके बाद क्या हुआ, फिर भी वो लक्ष्मण जी जो रामचंद्र के प्राण से अधिक प्रिय भाई है, वो राम लक्ष्मण जी को त्याग दिए। कब, जब काल पुरुष आए थे भगवान राम रामचंद्र के साथ मिलने के लिए, उस समय ये शर्त हुआ एकांत में बातचीत होंगे, तो उसी समय कोई अंदर में नहीं जा सकेंगे हाँ, जो जाएंगे उसका प्राण दंड आदेश देंगे। तो वो द्वारपाल के रूप से लक्ष्मण जी को वहां पे निर्देश दिया, आओ रामचंद्र काल पुरुष जब एकांत कक्ष में अवस्थान कर रहे, उसी समय कौन आए थे, दुर्वासा मुनि हाँ, दुर्वासा मुनि रामचंद्र के साथ मिलने के लिए आए थे। तो लक्ष्मण जी बोला, तो अभी तो प्रभु अंदर में है, ये निर्देश है, अभी कोई अंदर में नहीं जा सकता, जो जाएंगे उनका मृत्यु दंड दे देंगे, तो थोड़ा अपेक्षा कीजिए, तो प्रभु जब काम खत्म करके बाहर आएंगे तब आप उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। दुर्वासा इतना क्रोध प्रकाश किए, मैं अभी वो मिलने के लिए आया हूँ, अभी छोड़ दो, नहीं देंगे तो मैं सांप दूंगा, ये अयोध्या वासियों के साथ ये अयोध्या भस्मीभूत हो जाएंगे हाँ, नागौरी के साथ हाँ, सब भस्मीभूत हो जाए। तब लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, विसर्जन दिया। तो इसीलिए वो आदेश, ये रामचंद्र जी का जो आदेश था वो तोड़ करके जब अंदर में चला गया, तब काल पुरुष अंतर्धान हो गया। रामचंद्र पहले जो शर्त था, शर्त के अनुसार राम लक्ष्मण जी को प्राण दान देने के लिए एक सभा बुलाया, तो सभा में उपस्थित थे वशिष्ठ जी, बड़े बड़े सब पंडित हाँ, गुरु सब उपस्थित थे, लेकिन कैसे प्राण दंड देंगे इसके बारे जब बात उठा तो कोई ठीक से जवाब नहीं दिए। तो उसी समय वहां पे कौन थे, हनुमान जी। हनुमान जी तब हाथ जोड़ करके बोल रहे, तो एक युक्ति है क्या ना, ये लक्ष्मण जी क्षत्रिय है, क्षत्रिय को त्याग देना मृत्यु दंड आदेश के समान है, तब ये बात सब मान लिया। तब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी जो प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण जी उनको त्याग दिया। रामचंद्र का इंटर जीवन ट्रेजेडी में भरपूर है, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरकार को ने बताते हैं, भगवान कृष्ण जब राम अवतार रूप लेकर के आए थे, उस अवतार में करुण रस आस्वादन किए, तो करुण रस प्राधान्य किए। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे, हलधर रूप लेकर के आए थे, हलधर रूप लेकर के जा रहे थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए? हास्य रस। हास्य रस ये गौण रस। कैसे हास्य रस आस्वादन किए? बलराम जी जब अपना प्रेयसी के लेकर लेकर के जब जमुना विहार करने के लिए जमुना जी का आदेश किए निकट आने के लिए, जमुना जी वो बलराम जी का प्रभाव, बलराम का शक्ति के बारे पता नहीं था, इसीलिए बलराम जी का आदेश तोड़ दिए। तो इसीलिए बलराम जी क्रोध प्रकाश करके जो हॉल लेकर के जो आकर्षित करे, तब समझ गए ये साक्षात भगवान है। वो जमुना जी तब बहुत सारे उपहार लेकर के वो बलराम जी के चरण में गिर गए, उपस्थित होकर के क्षमा प्रार्थना करते। ये एक हास्य रस आस्वादन के, बलराम साक्षात भगवान है, क्योंकि कृष्ण का दूसरे रूप है, दूसरे शरीर है बलराम। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये बताया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो हर अवतार के जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण का दूसरे शरीर है ये बलराम। इसीलिए बलराम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण जैसा है परमेश्वर भगवान है, बलराम जी ऐसा ही परमेश्वर भगवान है, सर्वशक्तिमान। तो इस अवतार में भगवान कृष्ण वो हस्तर शास्त्रदन के, इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर आए थे? बुद्ध रूप। बुद्ध रूप लेकर के जो आए थे उस अवतार में भगवान कृष्ण शांत रस आस्वादन किए। तो विश्लेषण करने के लिए समय नहीं, समय खत्म हो गया था। तो इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा अवतार रूप लेकर के आएंगे? कल्कि अवतार। कल्कि अवतार रूप लेकर के जब आएंगे उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन करेंगे? वीर रस आस्वादन करेंगे। ये भक्ति सिद्धांत सारी ठाकुर ऐसा ही शास्त्र से ऐसा ही मत प्रकट किए। 10 अवतार रूप लेकर के भगवान अलग अलग रस आस्वादन किए, क्योंकि भगवान हर रसों के स्रोत है। इसीलिए भगवान ये वामन अवतार रूप लेकर के आए थे, वो छल करके बलि महाराज के पास जितने सारे भौतिक चीज है वो सब छीन लेंगे, उनके साथ जितने जो संबंधी है वो सब तोड़ देंगे और बलि महाराज को असली वस्तु प्रदान करेंगे, वो भगवत भक्ति प्रदान करें बलि महाराज, तब भगवान का महान भक्त बन जाएंगे। भगवान का जब महान भक्त बन जाएंगे वो बलि महाराज, तब एक महाजन पद प्राप्त हो जाएंगे। द्वादश महाजन में ये बलि महाराज अन्यतम है, आत्मनिवेदनम, सब कुछ को भगवान को समर्पण करके महाजन बन गए, बलि महाराज महाजन है। तो ये भगवान का लीला है, तो लीला ऐसा ही भगवान वामन अवतार रूप लेकर के ऐसा ही लीला कर रहे है। तो टाइम हो गया, यहाँ रखो। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय श्री श्री राधा गोविंद देव की, जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की, जय श्रीमद् भक्तवृंद की। इसकम निगड़ी हा? अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। हाँ, अलग अलग भक्ति है, अलग अलग भक्ति श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे, वो एक भक्ति है। 9 प्रकार के जो भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बांदनं दासं सखं आत्मनिवेदनं, इनमें से बलि महाराज आत्मनिवेदन, इस भक्ति से वो भगवान का भक्त बन गया है, शुद्ध भक्त बन गया है। तो ऐसा ही बहुत सारे है, श्रवण है भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन है भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, महिमा का तो कीर्तन करना चाहिए, लीला का तो कीर्तन करना चाहिए, स्मरण इससे आपसे स्मरण हो जाएगा। एक एक अंग से एक एक भक्त ऐसा ही जिनके परिपूर्णता प्राप्त हो गए। जैसे श्रवण करके परिश्री महाराज भगवान का पार्षद उत्तर लेकर के भगवत धाम में चला गए। 7 दिन 7 रात कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, थोड़ा भी विश्राम लिया नहीं, निरंतर भागवत कथामृत पान करके ये नश्वर भौतिक शरीर छोड़ करके वो भगवान का पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चलाएगा। ऐसे हरिदास कीर्तन करके भगवान का नाम हर समय जाप करके कीर्तन करके ऐसे ही वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे ही प्रहलाद महाराज हर समय स्मरण करके भगवान का पार्षदत्व रूप बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। अर्चन वंदन अर्चन पृथ्वी महाराज वंदन अक्रूर अर्चन वंदन दास हनुमान जी दास भाव से दास भक्ति से सख अर्जुन सख आओ ये आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन बलि महाराज आओ जो पाद सेवन लक्ष्मी देवी 9 प्रकार के। लेकिन प्रभुपाद क्या किए हमारे स्कंद से ये 9 प्रकार के भक्ति का जो अंग है ये हर अंग ये स्कंद से प्रचार ये प्रवर्तन हो रहा है। इसीलिए 9 प्रकार के भक्ति थोड़ा थोड़ा आप अनुशीलन करेंगे तो एक दिन ना ये शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसीलिए 9 प्रकार भक्ति में से पहले जो 3 है श्रवण कीर्तन विश्व स्मरण ये 3 प्रकार का अंग भागवत मार्ग माना जाता है। अगले 6 प्रकार जो है वो पंचरात्र विधि मार्ग माना जाता है। लेकिन हम तो डायरेक्ट भागवत मार्ग प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, थोड़ा विश्राम लिए नहीं, निरंतर भागवत कथा श्रवण करके ऐसा भागवत धर्म पालन करके भगवत धाम में चला गया, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमारे लिए प्रभुपाद 1 घंटा हर दिन तक नित्यंग भागवत सेवा हर दिन श्रवण करना चाहिए। तो नित्यंग भागवत सेवा तो प्रतिदिन ऐसा ही भक्त भागवत के मुख से ये ग्रंथ भागवत भगवान के बारे श्रवण करना चाहिए। तो हर अंग है श्रवण, इसके बारे कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन भगवान महिमा का कीर्तन ये ऐसा ये भागवत धर्म जैसे हरिदास ठाकुर ऐसा करके वो शुद्ध भक्त बन गए, भगवान का पार्षद रूप बन गए। तो ऐसे प्रहलाद महाराज स्मरण करके ऐसे ही भगवान के पार्षद हर समय 24 घंटे भगवान के याद में धाम। तो ऐसा ही नहीं कर सकेंगे डायरेक्ट ऐसे भागवत धर्म, क्योंकि हमारा शरीर मन अशुद्ध है, इसलिए भगवान के सेवा में नियुक्त होना चाहिए, भगवान का मंदिर मार्जन करना चाहिए, भगवान का पूजा अर्चन करना चाहिए। ऐसा ही भगवान के लिए हर प्रकार भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये सब भक्ति है, भक्ति का अंग। ऐसा करने से एक दिन हम सब ऐसा शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हमारा तो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में है, हम सब बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में शरीर धर्म में है, शरीर धर्म में है, इसीलिए ये सब करना चाहिए। ये पंचरात्र विधि के अनुसार पूजा अर्चन करना चाहिए, मंदिर मार्जन करना चाहिए और ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये सब भक्ति का अंग है। समझ रहे हैं? तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्थिति ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज ओ हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज ऐसा ही नहीं, तो इसीलिए ये सब करना चाहिए। ठीक है, और किसी का भी प्रश्न है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ वो एक है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड 14 लोक है, तो हम जो लोक पर है ये भूलोक माना जाता है। भूलोक के ऊपर भूव, उसके ऊपर स, उसके ऊपर मह, उसके ऊपर जन, उसके ऊपर सत्य, भू भूव स मह जन तप सत्य। फिर भी नीचे वही ऐसा ही 7 निम्नलोक है, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पातल। तो एक लोक है सुतल, लेकिन वहां पे बलि महाराज राजा बन गए। वो जो भूतल है ना, 3 प्रकार के स्वर्ग है, पहले ये समझना चाहिए ठीक से। 3 प्रकार के स्वर्ग है, उच्च लोग में जो है वो दिव्य स्वर्ग माना जाता है, और हमारा ये जो भूलोक में भारतवर्ष छोड़ करके और जे 8 वर्ष है, समझ रहे हैं, किंग पुरुष वर्ष जहां पे हनुमान जी है, ऐसा ही 8 जो वर्ष है वो सभी भूस्वर्ग माना जाता है, उच्च दिव्य स्वर्ग। और भूलोक में जो भारतवर्ष ये कर्म क्षेत्र है, जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही गति होगा आपका। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में ये बताया है, जानती देवव्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानी जानती भूतेज्जा, जानती मौत जाजिनम अपिमा। जो देवता आदमी को उपासन करते वो देवलोक में जाते हैं, कभी भगवत धाम में नहीं जा सके सकते। और जो पितृलोक को उपासन करता है वो पितृलोक में जाएंगे, जो भूत प्रेत उपासन करता है भूतलोक में जाएंगे। तो कौन आदमी भगवत धाम में जाएंगे, जानती मौत जाजिनम अपिमा, जो मेरी उपासना करता है वही केवल मेरा पास आते हैं। तो भगवान की उपासना, लेकिन पागल बात चल रहा है, जितना मत उतना ही पद। तो देव उपासना करके कब भगवत धाम में नहीं जाए, भगवान का आराधना करना चाहिए। तो ऐसा ही वो निम्न जो 7 लोक है वो सबके बिल स्वर्ग माना जाता है, समझ रहे। उच्च लोक दिव्य स्वर्ग है, और भूखंड में जो ये है वो भूस्वर्ग माना जाता है, और निम्न जो 7 लोक है वो सभी को बिल स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या है, केवल उपभोग। तो निम्न जो बिल स्वर्ग है वो दिव्य स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य वहां पे है, समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, वो मैदानव का एक लड़की एक पुत्र है, बॉल, उनका नाम है बॉल, अतल बीतल में है, नीचे जो लोग हैं तो 96 प्रकार के जादू जानते हैं, समझ रहे हैं। उनमें से एक जादू क्या, जृम्भन जप करेंगे, जृम्भन का मतलब हाई उठाएंगे, हाई उठाएंगे, समझ रहे हैं। तो वहां से 3 प्रकार के रमणी प्रकट हो जाएंगे, ऐसा जादू कोई देखा प्रकट करता है, देखाता है, ऐसा जादू कोई कर सकता है। ये जिर्महन करेंगे 3 प्रकार रमणी प्रकट हो जाएंगे, तो क्या क्या, कामिनी शैरिनी पुंसचाली, 3 प्रकार के रमणी। तो कामिनी का मतलब पुरुष का जो काम उद्दीपन कर सकती है वो कामिनी माना जाता है। पुंसचाली, एक पुरुष को छोड़कर के दूसरे पुरुष के साथ प्रेम करना, हाँ, तो ये एक पुंसचाली। शैरिनी, किसी का अधीन में रहेंगे नहीं, अपना इच्छा से वो अपना अपना जो इंद्र तृप्ति करते हैं, एक शैरिनी माना जाता है। 3 प्रकार के, तो वहां पे 1 प्रकार रस मिलता है, जैसे स्वर्ग में समरस, ऐसा ही वो बिल स्वर्ग में 1 प्रकार रस मिलता है, वो रस का नाम हाटक रस। ये भूलोक से कोई दुर्बल वहाँ पतले वाला कोई आदमी वहां पे जाएंगे तो सब जितने सारे रमणिया है क्या करेंगे, वो व्यक्ति को हाटक रस पिला देंगे। तो देने से 10,000 का हाथी का बल आ जाएगा उनके शरीर में, समझ रहे हैं। हरे कृष्ण, समझ रहे हैं। 10,000 का हाथी का बल जब आ जाएगा तो वो अपना को ईश्वर मानता है, जो असली ईश्वर है ईश्वर को मानता नहीं, अपने को ईश्वर समझता है। तो वो 3 प्रकार के जो रमणी है उनके साथ रतिक्रिया करेंगे, ये वो वहां पे ये स्वर्ग सुख है, समझ रहे हैं। स्वर्ग सुख का मतलब उपभोग। आप यहाँ पे पुण्य कर्म करेंगे जाके स्वर्गलोक में जाएंगे तो क्या करेंगे आगे, स्वर्ग सुख क्या है, वो वहां पे सुंदरी, बहुत अच्छा अच्छा सुंदरी रमणी है, हाँ, वो सभी को साथ क्या करेंगे, रोती क्रिया करेंगे, ये स्वर्ग सुख है। वहां पर नंदन कानन है, नंदन कानन वो सभी के साथ विहार करेंगे, वहां पे समरस पान करेंगे, समरस पान करने से वो अपना बाल कभी सफेद होगा नहीं और यह क्या होगा, नव जुवा रूप लेकर के रहेंगे, हाँ, तो नव जुवा रूप लेकर के जब रहेंगे वहां पे ऐसा युवती है, हा? वो मेनका है, उर्वशी है, बहुत सारे अप्सरा है, तो सभी के साथ ऐसा ही रतिक्रिया। ये स्वर्ग का सुख मतलब रतिक्रिया, तो ये ब्रह्मांड का मतलब क्या है? हाँ, ये मैथुनागार, समझ रहे हैं? ये ब्रह्मांड का मतलब मैथुनागार। इसीलिए तो आदमी कितना परिश्रम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, वो रोती सुख भोग करने के, असल उद्देश्य क्या है? आप तो अकेला आए हैं इस जगत में, अकेला तो जाना है, इतना परिश्रम करके इतना अर्थ कमाने के लिए क्या आवश्यक है, जरूरत है? वो एकमात्र उद्देश्य है वो स्त्री संग करने के लिए, स्त्री संभोग करने के लिए, समझ रहे हैं? इसलिए ब्रह्मांड को ये मैथुनागार माना जाता है। इसीलिए तो हर आदमी ये इतना पढ़ाई कर रहा है, पैसा कमाते हैं, वो स्त्री के साथ रतिक्रिया, लास्ट वो सुख है रतिक्रिया, ये सुख। इसीलिए तीन प्रकार के स्वर्ग है, दिव्य स्वर्ग, भू स्वर्ग और बिल स्वर्ग। तो इस स्वर्ग का मतलब वो स्त्री सम्मुख सुख भोग करना, समझ रहे हैं? तो सुतालो वही है, नीचे है, लेकिन वहां पे बहुत ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य के वहां पे बोले मारा राजा बन गए। और ये जो सप्तम मन्वंतर चल रहा है ना, सप्तम मन्वंतर के बाद अष्टम मनु का शासन पीरियड आएगा, सावर्णी मनु, तब बोले महाराज उस समय स्वर्ग इंद्र बन जाएंगे। लेकिन वो तो भक्ति प्राप्त है, तो लेकिन वो इंद्र पद में थोड़ा समय रहेंगे, क्योंकि वो अभी भक्त बन गया है। इंद्र पदपति ऐसे ही लालसा नहीं है, वो इंद्र पद छोड़ करके भगवत धाम में चला जाएंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, वही केवल पद के लिए हर प्रकार प्रयास कर रहे हैं, कि नहीं? ऐसा है कि हमारे इस्कान का भक्त होते हुए भी वो भक्ति करने के लिए घर छोड़ करके आए हैं, लेकिन इस्कान में बहुत सारे बड़े बड़े पोजिशन है, पोस्ट है, वो पाने के लिए कितना प्रकार प्रयास कर रहे, भक्ति छोड़ करके, भजन छोड़ करके, असली उद्देश्य भूल गया। ये पथ का ये है, प्रभाव है, समझ रहे? हमें हम क्योंकि घर छोड़ करके मंदिर में आया है, वो भूल गए। अभी बड़ा बड़ा पोस्ट है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जीबीसी, ये सब बड़ा बड़ा सब पोस्ट है। इस पोस्ट पर जाए रहूंगा, बहुत सम्मान मिलेगा, तो उसीलिए क्या करो, भक्ति छोड़ करके वो पद पर, ये पद पर अपना को स्थापन करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना, जैसे ही भौतिक जगत में चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के लिए क्या कितना परिश्रम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर होने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, तो ऐसे ही। लेकिन जो मनुष्य शरीर हम प्राप्त है, तो कितना दिन के लिए, इसके बारे कोई याद नहीं है। आज है, कल छोड़ना है, तब अपना कर्म के अनुसार अगले जन्म में क्या बन जाएंगे, अपना कर्म अनुसार एक कुत्ता बन जाएंगे। जैसे हमारा एक ज्योतिषी बताया है जो हमारे भारत स्वाधीनता के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है थे, नेहरू। वो पद पर इतना ये था, माने लालसा था, उस कर्म से क्या हुआ, वो अगले जन्म में स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन गए। देखिए, इस जन्म में ब्राह्मण घर में जन्म ले है, फिर भी राज्य ये राष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य वो पालन नहीं किए, उसके लिए कोई कोशिश नहीं किए, और अपना कर्म के अनुसार ये प्रेसिडेंट जो मनुष्य से छोड़ करके अगले जन्म में स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन गए। ऐसे कि देवराज इंद्र होते हुए भी वहां पे अपना गुरुजी के चरण अपराध करने से क्या हुआ, वहां से इस जगत, ये मर्त जगत में गिर गए, जाके एक शोर रूप धारण करके ऐसे जीवन जापन कर रहे हैं। देखिए, अपना अपना कर्मफल अपना को भोग करना चाहिए, वो करना है। हा? तो ये मनुष्य शरीर से ऐसा काम करेंगे जो कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला, इसीलिए कोशिश करना चाहिए, इसीलिए भगवत भक्ति करना चाहिए। हा? भक्ति से तब भवबंधन से जन्मित चक्र से उद्धार होकर के भगवत धाम में जा सकते। कई राजनीति करके कभी ऐसा ही वो जन्मित चक्र से मुक्त होकर के भगवत धाम में जा नहीं सके, सही क्या? नहीं, वो बात चलेगा नहीं। आप मंत्री हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, जब तक तो भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक आपका उच्च गति नहीं होगा। इसीलिए सावधानी होना चाहिए हमारे मनुष्य जिन हर दिन के लिए नहीं। हाँ, हम तो सब कलयुग का आदमी, हमारे आयुष के बारे कोई गारंटी नहीं है, है क्या? हाँ, इसीलिए जब तक है भगवत भक्ति करना चाहिए। पहले सब राजा जितने सब थे, जैसा युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, सब राजा होते हुए भी हर समय भगवत भक्ति में थे, है कि नहीं? जब जब परीक्षित महाराज सुना उनका 100 दिन है आयु, तो सब कुछ छोड़ करके वो भक्ति करने के लिए चला गया। वो कैसे? केवल कृष्ण भक्ति करके 7 दिन परीक्षित सुखदेव गोस्वामी मुख से भागवत का तो श्रवण करके, श्रवण रूपी भक्ति कैसे करके अपना जीवन का वो क्या पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गए। ऐसे ही भवबंध से उद्धार होकर भगवत धाम में चले, ये याद रखना चाहिए जो भी पोस्ट हो। लेकिन हम सबकी याद रखना चाहिए, जब तक हम भगवत भक्ति नहीं करें तब तक हमारे कोई उच्च गति नहीं है, सदगति नहीं है। इसीलिए हम सबको भगवत भक्ति करना चाहिए। जब 5 पांडव भगवान के महान भक्त थे, तो उन्होंने जब सुना भगवान ये अपना लीला संवरण करके अपना धाम में चले गए, चौ युधिष्ठिर महाराज और उनके जे चारों भाई और पत्नी द्रौपदी राज सब छोड़ करके वो निकाल गए। ये सब महाजन है, हम सभी को वो सभी का पथ पर चलना है। महाजन जैन गतस्य पंत, तब हम सब ऐसे ही भवबंधन से उद्धार होकर के भगवत धाम में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशेष अशेष धन्यवाद।